नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर राज्यसभा में भारत का रुख स्पष्ट कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के व्यक्ति ही अनुसूचित जाति का दर्जा पाने के हकदार। कृषि मंत्री ने कहा, केंद्र सरकार के निरंतर प्रयासों से किसानों की आय 8 गुना तक बढ़ी। असम, केरलम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन पत्रों की जांच जारी। कोलंबियाई सैन्य विमान दुर्घटना में 66 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। और बेलारूस की अराइना सबालेंका मायामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर राज्यसभा में देश का रुख स्पष्ट कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका वक्तव्य।
सरकार ये भी प्रयास कर रही है कि आने वाले बुआई के सीजन में किसानों को पर्याप्त खाद मिलती रहे। सरकार ने खाद की पर्याप्त सप्लाई के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। सरकार का निरंतर प्रयास है कि किसानों पर किसी भी संकट का बोझ न पड़े। मैं देश के किसानों को फिर आश्वस्त करूंगा कि सरकार हर चुनौती के समाधान के लिए उनके साथ खड़ी। आदरणीय सभापति जी, ये राज्यों का सदन है। आने वाले समय में ये संकट हमारे देश की बड़ी परीक्षा लेने वाला है और इस परीक्षा में सफलता के लिए राज्यों का सहयोग बहुत आवश्यक है। इसलिए इस सदन के माध्यम से मैं देश के सभी राज्यों की सरकारों से भी कुछ आग्रह करना चाहता हूं। संकट के समय गरीबों पर, श्रमिकों पर, प्रवासी साथियों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ समय पर मिलता रहे, ये
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण देश में किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री चौहान ने किसानों की आय के बारे में जानकारी दी।
कई किसानों की आय दुगनी हुई है और केवल दुगनी नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कई किसानों की तिगनी भी हुई है, कई की चौगनी भी हुई है। मैं आज बताना चाहता हूँ, हमने बजट बढ़ा के 19,306 करोड़ से 1,30,000 करोड़ से ज्यादा हमने उत्पादन बढ़ाने का काम किया है। 14 के बाद 44% उत्पादन अलग अलग खाद्यान्न का बढ़ाया।
लोकसभा में वित्त विधेयक 2026 पर चर्चा फिर शुरू हो गई है। ये विधेयक वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने का प्रावधान करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल सदन में ये विधेयक पेश किया था। आज की चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य के बंद होने से उत्पन्न ऊर्जा संकट का पूरे विश्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक स्थिति को देखते हुए क्या ये बजट अब भी वैध है। श्री तिवारी ने कहा कि पिछले महीने पेश किए गए बजट अनुमान अब पुराने हो चुके हैं।
28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया और इससे भारत के ऊपर इसका बड़ा संवेदनशील असर पड़ा है। 2013-14 में भारत 77% कच्चा तेल आयात करता था, 25-26 में ये बढ़कर 88% हो गया।
भाजपा के नवीन जिंदल ने कहा कि जब नीतियां स्पष्ट होती हैं और इरादे नेक होते हैं तो जनता स्वयं राष्ट्र निर्माण में भाग लेने के लिए आगे आती है।
जब हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की बातें करते हैं तो इनका ध्यान सिर्फ प्रोटेस्ट और डिसरप्शन पे होता है। विपक्ष को समझना होगा कि यह बिल किसी एक पार्टी का नहीं, इस देश के भविष्य के लिए बिल है। जब यह बिल पारित होगा तो इसका एक एक पैसा हमारे अन्नदाताओं के खेतों में हरियाली लाएगा, हमारे युवाओं के हाथों में रोजगार देगा और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के एक सुरक्षित और विकसित भविष्य की सबसे बड़ी गारंटी बनेगा।
जेडीयू के रामप्रीत मंडल ने कृषि क्षेत्र के लिए बजट में 6% की वृद्धि करने के लिए सरकार की सराहना की। उन्होंने बिहार में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान का मुद्दा भी उठाया और किसानों के लिए मुआवजे की मांग की। समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज ने सरकार से जल जीवन मिशन, नमामि गंगा और MGNREGA के तहत उत्तर प्रदेश को दिए गए फंड का विवरण देने को कहा। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि सरकार ने पिछले 10 वर्ष में देश के पूर्वोत्तर राज्यों में 12 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए 2,733 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत तकनीकी और वित्तीय सहायता भी प्रदान की है। राज्यसभा में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में भी व्यापक स्तर पर सुधार कार्य किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अनुयायी ही अनुसूचित जाति का दर्जा पाने के पात्र हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि किसी अन्य धर्म जैसे कि ईसाई धर्म में धर्मांतरण करने से अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत और पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। एक रिपोर्ट।
सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एक आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि एक बार कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपना लेता है और सक्रिय रूप से उस धर्म का पालन करता है तो उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति पीके मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने फैसला सुनाया कि ईसाई धर्म अपनाने वाला दलित व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकता। न्यायालय ने कहा कि यह स्थिति संविधान अनुसूचित जाति देश 1950 के तहत स्पष्ट रूप से स्थापित है। न्यायालय के अनुसार 1950 के आदेश के खंड 3 के तहत लगाया गया प्रतिबंध बाध्यकारी है। समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े हाल के घटनाक्रमों के मद्देनजर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। यह समीक्षा ऐसे समय में हुई है जब पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है। इस संघर्ष से वैश्विक व्यापार मार्ग, विशेष रूप से होर्मुज जल डमरू मध्य से होकर गुजरने वाले मार्ग पूरी तरह प्रभावित हुए हैं। इस बैठक में रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी उपस्थित थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में भारतीय रेलवे के इस वर्ष 52 सप्ताह में 52 सुधार के संकल्प के अंतर्गत 5 सुधारों की घोषणा की है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने टिकट रद्द करने और धन वापसी नियमों, रेलगाड़ी में चढ़ते समय में बदलाव, नमक परिवहन, वाहन परिवहन और विनिर्माण की गुणवत्ता में सुधारों की घोषणा की। एक रिपोर्ट।
टिकट रद्द करने और धन वापसी नियमों में सुधारों पर श्री वैष्णव ने बताया कि रेलगाड़ी के प्रस्थान से 72 घंटे से अधिक समय पहले रद्द किए गए टिकटों पर प्रति यात्री न्यूनतम एकमुश्त रद्दीकरण शुल्क लागू होगा। रेलगाड़ी के प्रस्थान से 72 घंटे से कम और 24 घंटे तक रद्द किए गए टिकटों पर किराए का 25% रद्दीकरण शुल्क के रूप में लिया जाएगा। वहीं प्रस्थान से 24 घंटे से कम और 8 घंटे तक रद्द किए गए टिकटों पर 50% धन वापसी दी जाएगी। श्री वैष्णव ने कहा कि निर्धारित प्रस्थान से 8 घंटे से कम समय पहले टिकट रद्द करने पर कोई धन वापसी नहीं होगी। रेलगाड़ी में चढ़ने के नियमों में किए गए सुधारों पर श्री वैष्णव ने बताया कि अब ट्रेन के प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग प्वाइंट बदला जा सकता है। श्री वैष्णव ने बताया कि ऑटो वाहकों के लिए सिंगल स्टैक और डबल स्टैक वैगन शुरू किए गए हैं। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
सरकार ने रेल संपर्क को मजबूत करने और परिचालन दक्षता में सुधार लाने के लिए गुजरात में कोसंबा रेल ओवर रेल फ्लाईओवर परियोजना और बिहार में भागलपुर बाईपास परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि दोनों परियोजनाओं की कुल स्वीकृत लागत लगभग 647 करोड़ रुपए है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। असम, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच हो रही है। बृहस्पतिवार तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। दो राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में एक ही चरण में 9 अप्रैल को मतदान होना है। तमिलनाडु में डीएमके के नेतृत्व वाली सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस के बीच सीट बंटवारे को लेकर वार्ता अंतिम रूप नहीं ले पाई है। सीपीआईएम ने 5 सीटों पर सहमति दी है। सीपीआईएम के राज्य सचिव पी षणमुगम ने डीएमके के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। पुदुचेरी विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन में सहयोगी पार्टी विदुथलाई चिरुथाइगल काची वीसीके ने 3 सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। निर्वाचन आयोग ने कल रात पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बारे में न्यायालय के निर्णय के बाद पहली पूरक मतदाता सूची जारी कर दी है। प्रत्येक बूथ के लिए सूची निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर देर रात उपलब्ध कराई गई। निर्वाचन आयोग ने आज मतदान वाले राज्य और उनके पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिवों, उपराज्यपालों, मुख्य सचिवों और गृह उत्पाद शुल्क SGST आदि के प्रधान सचिवों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बैठक और चुनाव खुफिया संबंधी बहुविभागीय समिति की बैठक आयोजित की। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस आज पश्चिम एशिया में आने जाने वाली 24 निर्धारित और विशेष उड़ानें संचालित करेगी। एक बयान में बताया गया है कि वे सऊदी अरब जेद्दा से आने जाने वाली अपनी निर्धारित सेवाएं जारी रखेगी। भारत और जेद्दा के बीच कुल 10 उड़ानें संचालित होंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान में अस्थायी रूप से हमलों पर रोक लगाने की घोषणा के बावजूद लेबनान में इसराइल के हमले जारी हैं। आज तड़के बेरूत से लगभग 10 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बशामौन में एक आवासीय इमारत पर हवाई हमले में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। 5 लोग घायल हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लेबनान में लगभग 12 लाख लोग विस्थापित हुए हैं।
इसराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोटरिच ने लेबनान के क्षेत्र पर कब्जा करने का आह्वान करते हुए घोषणा की है कि इसराइल की नई सीमा लिटानी नदी तक विस्तारित होनी चाहिए। हालांकि इसराइली सेना का कहना है कि दक्षिणी लेबनान में उसके अभियान सीमित और लक्षित हैं। सेना ने कहा कि हिजबुल्ला के साथ सीधी झड़पें जारी हैं और उसके बुनियादी ढांचे को नष्ट किया जा रहा है। नाकोरा में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मुख्यालय पर भी हमला किया गया। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने युद्ध समाप्त करने के लिए ही बातचीत का आह्वान किया है। तनाव बढ़ने के बाद से स्वास्थ्य केंद्रों पर 64 हमले हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है कि उसने आज तड़के ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 के तहत इसराइल और अमेरिका के ठिकानों पर जवाबी हमले किए। नए हमलों में इलैत, दिमोना, उत्तरी तेल अवीव में इसराइल के ठिकानों और क्षेत्र में कई अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। कोलंबिया में 128 लोगों को ले जा रहा एक सैन्य परिवहन विमान कल प्यूटो लेगुइजामो में उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 66 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। एक रिपोर्ट।
जनरल ह्यूगो अलेजांद्रो लोपेस बारेटो ने बताया कि विमान में 128 लोग सवार थे। इनमें सेना के 115 जवान, चालक दल के 11 सदस्य और राष्ट्रीय पुलिस के 2 जवान शामिल थे। बारेटो ने बताया कि 57 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। उन्होंने बताया कि 4 सैन्य कर्मी अभी भी लापता है। रक्षा मंत्री पेद्रो सांचेज ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कल दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान पोटोमायो के एक अन्य शहर में सैनिकों को ले जा रहा था। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
बेलारूस की अराइना सबलेंका मायामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में उन्होंने चीन की लिंग किनचिनवेन को पढ़ाया। सबलेंका का अगला मुकाबला अमेरिका की हैली बेपेटिस से होगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत सरकार का 1,03,700 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। सत्र को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में दिल्ली का 3रा स्थान है। आज विश्व क्षय रोग दिवस है। क्षय रोग की रोकथाम और इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर राज्यसभा में भारत का रुख स्पष्ट किया। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के व्यक्ति ही अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त के हकदार। कृषि मंत्री ने कहा केंद्र सरकार के निरंतर प्रयासों से किसानों की आय 8 गुना तक बढ़ी। असम, केरलम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन पत्रों की जांच जारी। कोलंबियाई सैन्य विमान दुर्घटना में 66 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। और बेलारूस के अराइना सबलेंका मायामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।